gentlemen, on behalf of my beloved spiritual master, His Divine Grace, Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, I would like to welcome you to this auspicious occasion where we are gathered together for the purpose of purifying our own hearts, purifying the nation and all the world through participating in the most auspicious and important of all responsibilities for those in this human form of life, which is to hear and chant the glories of the Absolute Truth, Sri Krishna.
माताओं और सज्जनों, मेरे गुरु महाराज कृष्ण कृपा मूर्ति एसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी की ओर से मैं आप सबका यहाँ पर हार्दिक स्वागत करता हूँ कि इस पवित्र मंगलमयी सत्संग सभा में आप सब उपस्थित हुए हैं। यहाँ हम इसलिए उपस्थित हुए हैं कि हम अपने हृदय को शुद्ध कर सकें और इस हृदय की शुद्धता से इस राष्ट्र को, इस विश्व को और सारी चेतना को शुद्ध करके मनुष्य जीवन का जो सर्वोच्च उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण का नाम और कीर्तन करना, वो हम यहाँ पर संपन्न कर सके।
We have just observed in this wonderful drama enacted by Lord Krishna's devotees how one who has faith in the supreme power of God can overcome all obstacles in life.
Abhi is natak mein jo ki bhagwan shri krishna ke bhakton dwara yahan par ayojit kiya gaya tha humne dekha ki koi bhi vyakti jisko bhagwan mein bharosa hai wo kaise kisi bhi sankat par maat kar sakta hai.
Materialistic people are always trying to overcome the challenges of life through material endeavors.
भोगवादी लोग जीवन की सारी चुनौतियों को भौतिकवादी प्रयत्न से मात करना चाहते हैं।
In Bhagavad Gita, Krishna warns us that your endeavors will fail.
भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण हमको ये सचेत करते हैं कि इस तरह से आप भले कितने ही प्रयत्न करेंगे, आपके यहाँ निराशा ही होगी।
दुकालायम शाश्वतम माम उपेत्य पुनारचन मा दुकालायम शाश्वतम. That in this world the problem is everything is temporary. The problem is we are always in the clutches of the dualities of success and failure, honor and dishonor, pleasure and pain, victory and defeat, and we cannot escape. And when we try to make a solution on the same platform of this illusory conception as the problem itself, the solution becomes the source of a greater problem than the problem we are originally trying to solve. And we can see all around in the planet that this is what is happening.
इस जगत में जहाँ पर सब कुछ अस्थाई है, यहाँ पर हमको बहुत अत्यधिक द्वंद्वों का सामना करना पड़ता है, जैसे सुख, दुख, यश, अपयश, हानि, लाभ, और इस प्रकार से इस स्तर पर अगर हम किसी भी समस्या का समाधान ढूँढने की कोशिश करते हैं, तो हमें ये निश्चित समझ में आता है कि जो समाधान हमारे पास है वो इस समस्या से भी अधिक खराब है।
But Krishna, स्वयं भगवान, is the source of everything that exists. ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व करना करणम. He is the supreme controller.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण है वो ऐसे कहते हैं ईश्वर परम कृष्ण, सब कुछ उनसे आता है, और जो भी कुछ होता है उसके परम नियंत्रक स्वयं भगवान श्री कृष्ण ही हैं।
And in Bhagavad Gita, Krishna declares it as his own promise. Konteya pratijane hiname bhakta pranashyati. I will always protect my devotee.
और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में ये वचन देते हैं कि हे कौंतेय अर्जुन, मैं वचन देता हूं कि मैं हमेशा मेरे भक्तों की रक्षा करूंगा।
सर्वधर्मान् परित्यजा मम एकम शरणं व्रजा अहम त्वं सर्वपापेभ्यो मोक्षायै शमिमा सुचः। We all want to become free from fear of the impending dangers that surround us at all times and all places in this world. And Krishna gives us the means by surrendering to Him.
हमको यहाँ पर जो भी सारी चीजें जो भयभीत करती है उससे निकलने का एक अवसर चाहिए और भगवान श्री कृष्ण यही बताते हैं कि आप अगर मेरी शरण आओगे तो मैं आपके आपको सारे भय से सारे डर से मुक्त कर दूंगा।
We have seen in this beautiful drama tonight of how Jamunacharya, when he was only a child of approximately 5 years old, he was not so learned at that time by material standards. And Kolahala was the greatest pundit in all the world. He was famous for defeating, annihilating, slaughtering anyone that ever came before him in debate.
यहाँ पर इस नाट्य में हमने देखा कि श्री जामुनाचार्य वो तो उस समय एक छोटे से बालक थे और भौतिक दृष्टि से ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे और उनके सामने जो कोलाहल पंडित थे वो उस जमाने के विश्व के सबसे प्रख्यात विद्वान थे और वो अपने सामने वाद विवाद में खड़े किसी भी प्रतिद्वंद्वी को पूर्ण रूप से परास्त करने में सक्षम थे।
He was a veritable mountain of mundane knowledge, scriptural knowledge, and most of all, false pride that came from being so learned.
कोलाहल पंडित वो तो मानो मूर्तिमंत एक ज्ञान का पर्वत थे और उस ज्ञान के साथ उनका जो अहंकार था वो भी उतना ही बड़ा था।
This little child, Jamuna, challenged him to a debate and spoke so honestly against this great pundit who was the spiritual master of the king. Fearlessly, knowing that if he were to lose this debate, he would most definitely be killed.
इस नाट्य में हमने देखा कि ये छोटा सा बालक वो कितनी निर्भयता से ये बात कर रहा था। उसे पता था कि वो सत्य ही कहेगा और ये भी पता था कि अगर इस द्वंद्व में, इस वाद विवाद की स्पर्धा में अगर वो हार जाएगा तो निश्चित उसे अपनी जान से हाथ धोने बैठने पड़ेंगे।
Because he had absolute faith in Krishna's promise in the Gita.
क्योंकि उसे भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जो वचन दिया है उसके ऊपर पूर्ण विश्वास था।
मुकाम करोति वाचालं भंगुं लंगयते गिरिं यत् कृपातमहं वन्दे श्री गुरुं दीनधारिणं। That one who has faith in Guru and Krishna, even if he has lain, he can cross mountains. Even if he is blind, he can see the most far-reaching stars in the night. And even if he is dumb, he can speak eloquent poetry.
ऐसे बताया जाता है कि जिस व्यक्ति की गुरु और श्री कृष्ण पर श्रद्धा है वो अगर पंगु है तो भी वो बड़े बड़े पर्वत चढ़ सकता है। अगर वो बोल नहीं पाता तो भी वो बहुत अच्छे प्रवचन दे सकता है और अगर अंधा है तो भी वो दूर के तारे देख सकता है।
Because he was a bhakta with faith and devotion, this little 5-year-old child defeated the great king's own pundit Kolahala.
क्योंकि उनके पास भक्ति थी, वो भक्त थे, इसलिए श्रद्धा और भक्ति के बल पर उन्होंने इस राजपंडित कोलाहल को भी परास्त कर दिया।
the only solution to the problems of this world is to become Krishna conscious.
इस विश्व की समस्या का एकमात्र हल है कृष्ण भावना भावित होना.
Because the biggest problem in this world is death.
क्योंकि इस विश्व का सबसे बड़ा डर है या सबसे भयानक संकट है मृत्यु.
And all of our scientists and technologists and engineers and politicians, they have not made any progress at all in solving this problem of death.
और इस मृत्यु की समस्या का हल करने के लिए हमारे सारे वैज्ञानिक, हमारे सारे तकनीकी विशारद और हमारे सारे राजनीतिज्ञों ने कोई इसमें कदम आगे नहीं बढ़ाए हैं.
The power of time is taking our life away from us moment after moment.
काल की शक्ति क्षणोक्षण हमारी हमारी जीवन की अवधि को कम करती जा रही है.
And there are so many dangers. Just walking across the road or driving in a car or getting into a train or getting into an airplane, death is impending at any moment.
और सब जगह पे विपदा ही विपदा है. अगर आप ट्रेन में जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, प्लेन से जा रहे हैं, सब जगह देखो, सब जगह पर विपदा ही है.
Therefore, Krishna in Bhagavad Gita gives us the solution to this problem.
इसलिए भगवान श्री कृष्ण श्री गीता में हमको इस समस्या का समाधान समझाते हैं.
If you solve this problem, automatically all problems in life are solved.
अगर आप इस समस्या का हल ढूंढ पाओगे तो अपने आप ही बाकी सारी समस्या हल हो जाएगी.
8th chapter of Shri Gita, Krishna sings, Antakhali chamam eva smanman vaktva khalevaram yaprayati samadbhavam yati nastratya sanshaya yam yam vapi smaran bhavam chajatyante khalevaram tham tham evaiti konteya sadatad bhava bhavataha. And whoever at the end of his life quits his body remembering me, alone at once attains my nature. Of this there is no doubt. Whatever state of being one remembers when he quits his body, O son of Kunti, that state he will attain without fail.
Bhagavad Gita ke 8th adhyay mein in do mahatvapurna shlok mein Bhagwan kehte hain ki jis prakar ka bhav आपके मृत्यु के समय होगा वैसे ही आपको शरीर मिलेगा. और अगर आप मृत्यु के समय मेरा स्मरण करोगे तो आप निश्चित बिना संशय आप मेरे धाम को या मुझको प्राप्त करोगे.
At this time in Bombay, many people have not come to this program tonight because their children are having exams.
इस समय इस मुंबई शहर में बहुत सारे आज लोग इसलिए इस सत्संग सभा में उपस्थित नहीं हुए हैं क्योंकि उनके बच्चे एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं.
Students as well as parents take these exams very seriously.
बच्चे और उनके पालक इन परीक्षाओं को बहुत ही गंभीरता से लेते हैं.
For weeks, for months, sometimes for years, children are just so fearfully and attentively studying for their exams.
कितने ही हफ्ते, महीने, कभी-कभी तो कितने ही साल, ये बच्चे बहुत ही भयभीत होकर इन परीक्षाओं के लिए तैयारी करते हैं.
Because if they pass their exam, their future in life will be full of opportunities.
क्योंकि अगर वो इन परीक्षा में उत्तीर्ण हुए तो उनका भविष्य है वो बड़ा उज्जवल रहेगा.
And if they pass, if they fail their exam, their future is very dark.
और अगर वो इस परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुए तो उनका भविष्य बड़ा ही अंधकारमय रहेगा.
And everyone knows the most important of all exams is the final exam.
और सब जानते हैं कि सबसे महत्वपूर्ण परीक्षा है ये अंतिम परीक्षा.
And the final exam is not your SAT or IST or entrance exam. The final exam is death.
और जो अंतिम परीक्षा है वो यहाँ की SSC, HSC या कोई और एग्जाम नहीं, ये तो साक्षात मृत्यु की परीक्षा है.
And your whole future is depending on how you grade on that exam.
और इस परीक्षा में आप किस प्रकार से अपनी तैयारी करते हैं, इसी के ऊपर आपका सारा भविष्य निर्भर है.
There are 8,400,000 species of life. There are heavenly planets, middle planets, and hellish planets full of sufferings. And you will be either promoted or demoted according to how you grade on the final exam.
तो इस प्रकार से 84 लाख योनियां हैं, 84 लाख प्रकार के शरीर हैं, ऊपर के स्वर्ग लोग हैं, मध्य लोग हैं, और नीचे के नरक लोग हैं जहां पर बहुत तकलीफ होती है. तो जिस प्रकार से आपने इस परीक्षा के लिए तैयारी की है, उसी प्रकार से या तो आपको ऊर्ध्वगति प्राप्त होगी या तो आपको अधोगति मिलेगी.
You see, of the 8,400,000 species of life, which are all just temporary residents for the soul is transmigrating from the lower species up, up, up through various species. Millions and millions and millions of years of birth, old age, disease, and death, miseries caused by one's own body, by the natural disturbances, and by other living beings. After millions and millions of such births, the soul actually is promoted to the human life.
In 84 lakh yoniyon se, jo ki ek atma ke liye एक अस्थाई निवास स्थान जैसे ही हैं, एक आत्मा भ्रमण करती है लाखों लाखों करोड़ों साल. और इस प्रकार से ये बहुत दुर्लभ मनुष्य जन्म जो है इस प्रकार के भ्रमण के बाद मिलता है. और इस भ्रमण में जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और इनके साथ त्रिविध प्रकार के क्लेश ये भी होते हैं.
अथाथो ब्रह्म जिज्ञासा दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे. This human form of life is exclusively meant to graduate from the repetition of birth and death by passing the final exam.
ये मनुष्य जन्म आपको आपके लिए इसीलिए दिया गया है कि आप इस final exam, इस अंतिम परीक्षा को ठीक तरह से उत्तीर्ण होकर ये जन्म मृत्यु का चक्र है इससे आप बाहर निकल सकें.
If we remember Krishna at the time of death, we never take birth in this material world again, but are elevated to our original spiritual position, which is eternal, full of knowledge and full of bliss.
अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण होते हैं तो फिर से आपका इस भौतिक जगत में पुनर्जन्म नहीं होता है, बल्कि आपको उस आध्यात्मिक लोक में भेजा जाता है जहां पर रहना आपकी मूल स्थिति है. और वहां पर ना तो कोई मृत्यु है, पूर्ण ज्ञानमय वातावरण है और वहां पर आनंद ही आनंद है.
But in order to pass this exam, we have to prepare ourselves throughout our life.
लेकिन इस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सारे जीवन भर इसकी तैयारी करनी पड़ती है.
Because you cannot cheat on this exam like you can in the exams in the universities and colleges today.
क्योंकि जैसे आम यूनिवर्सिटी या कॉलेज के एग्जाम में आप फंसा कर कॉपी करके अगर एग्जाम पास होना चाहते हैं, इस परीक्षा में इस प्रकार का कोई फसाना नहीं चल सकता.
What you are most attached to in your life will naturally come as the last thought at death.
आप किसी भी वस्तु पर जीवन भर जितने ज्यादा अत्यधिक आसक्त हैं, वही वस्तु अंतकाल में आपके सामने आ जाएगी.
एंड दैट इज द पर्पस ऑफ रिलीजन और योगा, टू प्रिपेयर आवर लाइव्स टू बी ब्लिसफुल एंड हैप्पी इन दिस वर्ल्ड एंड टू बी सक्सेसफुल इन आवर ह्यूमन लाइफ.
तो धर्म या योग, इन वस्तुओं का यही प्रयोजन है कि किस प्रकार से हम इस भौतिक जीवन को सुखी बनाएं और इस प्रकार से अपना भविष्य काल है उसको भी अच्छा बनाएं.
On the path of bhakti, which is described in Bhagavad Gita, we must practice it very carefully according to proper instruction.
भक्ति मार्ग जिसका कि भगवत गीता में अच्छी तरह से विवरण दिया है उसको बहुत ही सावधानी से और सभी आदेशों का पालन करके हमको उसका अनुशीलन करना है.
And any progress we make is never lost.
और इसमें आप जो भी प्रगति करते हैं वो कभी नष्ट नहीं होती.
In this regard, the Srimad Bhagavatam tells a wonderful story.
इस संबंध में श्रीमद् भागवत में एक बहुत ही सुंदर दृष्टांत मिलता है.
It is about a great king.
ये एक राजा का दृष्टांत है.
His name was Rishabhdev.
उनका नाम महाराज ऋषभदेव था.
He was an incarnation of the Supreme Lord Narayan.
वो भगवान श्री नारायण के अवतार थे.
And he ruled the world according to the purest and highest spiritual principles.
और उन्होंने सर्वोच्च आध्यात्मिक तत्वों और सिद्धांतों के अनुसार इस विश्व पर शासन किया.
This is called Varnashram Dharma.
उसे वर्णाश्रम धर्म प्रणाली कहते हैं.
Where according to one's natural qualities, one assumes responsibilities to work together within society with all other classes of men to live for purification and for spiritual development.
इस प्रणाली के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति अपने स्वाभाविक गुण के अनुसार समाज में रहता है बड़े ही सद्भाव और सहयोग की भावना से और जिस प प्रकार से सभी की आध्यात्मिक उन्नति हो सके.
In the Gita, Krishna teaches us that whatever our natural occupational tendency is, we should work according to religious principles under the guidance of saintly people. And through the performance of that work itself, we make spiritual progress.
भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को अपने अंतर्गत जो भी गुण हैं उन्हीं के अनुसार कर्म करते रहना चाहिए और अगर वो सच्चे साधु संतों के आज्ञा पालन करते हुए ऐसे कर्म करेगा तो ये उसका कर्म करना ही भगवान की पूजा होती है.
Providing we perform our work in a mood of always remembering Krishna and offering the fruits of our action in devotion to him.
तो इसमें शर्त यह है कि हम सारा काम जो करते हैं वो भगवान श्री कृष्ण का स्मरण करते हुए करें और जो भी कर्म फल आता है वो सब भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर अर्पित करें.
ऋषभदेव महाराज when he became older and his sons were of age to take the responsibility, he resigned from his post as king and gave it to his eldest son Bharat.
तो महाराज ऋषभदेव ने जब देखा कि उनके सारे पुत्र प्रौढ़ावस्था को प्राप्त होते जा रहे हैं तो उन्होंने अपने सबसे ज्येष्ठ पुत्र श्री भरत को राजा बनाया.
And he gave last instructions how to rule the kingdom and how to live.
और किस प्रकार से शासन करना चाहिए और किस प्रकार से जीवन बिताना चाहिए इसके बारे में ऋषभदेव महाराज ने अंतिम उपदेश दिए.
There's nothing political about his instructions.
उनके आदेश में कुछ भी राजनीति नहीं है.
It is all spiritual knowledge.
ये सब दिव्य ज्ञान है.
If you want to be a leader, if you want to be a king, the basis is faith and devotion to God.
अगर आपको नेता बनना है या आपको राजा बनना है इन सब का आधार मूल आधार है भगवान पर विश्वास.
नायाम देहो देह बजाम लो लोके कस्तान कमदार हति विभु जौन जय तपो दिव्यम पुत्र कयेन सत्वाम सुजेर्य संभ्राम सोक्याम त्वनांतम. He tells his sons, you have attained this rare human birth. Do not waste it seeking sense enjoyment, because these things are available to the dogs and hogs that eat stool. Human life is meant for the sublime process of tapasya. And the greatest tapasya is to always remember Krishna and offer your life as a service to Krishna. This will bring you real peace and real happiness.
उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि ये जो दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला है इस मानव जन्म को ऐसे कष्ट करने में ऐसे कार्य करने में मत लगाओ जिससे कि आपको केवल इंद्रिय सुख मिले और ये इंद्रिय सुख तो ऐसा है जो कि विष्ठा खाने वाले कुत्ते और सुअर को भी उपलब्ध है। मनुष्य जीवन का सही उद्देश्य है कि भगवान श्री कृष्ण को समर्पण करना, उनका स्मरण करना, और ये कार्य आप करोगे इससे आपको ऐसा सुख, ऐसी शांति मिलेगी कि वो कभी खत्म नहीं होगी।
He taught that the prime responsibility of a king, a teacher, a parent, a worshipable demigod, anyone in a leadership position with dependents, is to make sure that those who are subordinate never take birth in this material world again.
उन्होंने ये कहा कि जो भी माता, पिता, गुरु, राजा या देवता का पद चाहता है, उसको ये देखना है कि उसके ऊपर निर्भर जो भी पाल्य हैं, उन सब को जन्म मृत्यु के चक्र से उसको छुड़ाना चाहिए।
The instructions of Sri Rishabhdev to his 100 sons are most beneficial for all human society to understand very carefully.
महाराज ऋषभदेव ने अपने 100 पुत्रों को ये जो उपदेश दिए थे, ये समस्त मानव समाज के लिए बहुत ही लाभदायी है।
Bharat became king. And he was such a great spiritual leader that the whole world was God conscious.
Maharaj Bharat, फिर उनका राज्याभिषेक हो गया और वो इतने निपुण राजा थे कि उनके शासनकाल में सारा विश्व भगवत भावना युक्त था.
And this entire planet Earth was named after him, Bharatvarsha.
और इस प्रकार से इस समस्त ग्रह को, इस समस्त पृथ्वी को उन्हीं के ऊपर नाम दिया गया.
And all of the citizens loved him dearly because he loved them with such compassion.
और सारी प्रजा उनसे बहुत प्रेम करती थी क्योंकि वो स्वयं अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे।
He was not a representative of a political party. He was a pure and true representative of God.
वो किसी राजकीय पक्ष के प्रतिनिधि नहीं थे, बल्कि वो भगवान के प्रतिनिधि थे।
And therefore, all the citizens had complete faith in his words.
इसलिए सारी प्रजा को उनकी वचनों पर बहुत श्रद्धा थी।
And all the world was utterly prosperous, both materially and spiritually.
और सारे विश्व में भौतिक दृष्टि से और आध्यात्मिक दृष्टि से सब कुछ सुख और समृद्ध था।
So next, in about 2 weeks, the elections will take place here in India.
और कुछ 2 हफ्तों में इस भारत देश में इलेक्शंस या चुनाव होंगे।
Where everyone is wondering who will be the next leaders in Bharatvarsha.
और सब लोग सोच रहे हैं कि इस भारतवर्ष के नए नेता कौन होंगे।
We should pray that the leader of Bharatvarsha should be the representative of Bharat.
हमको ये प्रार्थना करनी चाहिए कि इस भारतवर्ष का नेता महाराज भरत का प्रतिनिधि होना चाहिए।
One who is truly humble, tolerant, self-controlled, honest, and a real well-wisher, not only of the body and the minds, but the souls of all living entities, by trying to propagate the Yuga Dharma of the congregational chanting of God's holy names.
Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. हमको ये देखना चाहिए कि जो भी नेता होगा वो नम्र, सहिष्णु, ईमानदार होगा, और सिर्फ लोगों के ये भौतिक शरीर है जो कि केवल एक बाह्य आवरण है, उसका प्रतिनिधि न होकर अंदर जो आत्मा है उसका प्रतिनिधि होगा। और इस प्रकार से ये कलयुग का युग धर्म है, भगवान के नाम का कीर्तन करना, उसका वो प्रचार करेगा।
But that will only happen if the voters understand these spiritual principles.
लेकिन ये तभी हो सकता है कि जो वोट देने वाली प्रजा है उनको ये सिद्धांत मालूम होने चाहिए।
So Bharat Maharaj was such a great king. And although he had such power, such wealth, such popularity, such strength and beauty, as soon as he came to a certain age within his rule, he understood it's exemplary to give to his children and live a life completely dedicated to remembering Krishna.
और महाराज भरत ने जिनके पास इतना सौंदर्य इतना यश इतनी संपत्ति इतना सब कुछ ऐश्वर्य था उन्होंने एक विशिष्ट आयु पर आने के बाद सब कुछ अपने पुत्रों को देकर बाकी का जो उर्वरित समय है वो केवल भगवान श्री कृष्ण के स्मरण हेतु अर्पित करने के लिए उन्होंने अपने राज्य को भी छोड़ दिए
He was so detached from everything of this world that when he left his kingdom, his family, his everything to live the life of a sadhu, it said he left it behind like one leaves their stool behind.
तो उन्होंने अपनी सारे ऐश्वर्य को इस प्रकार से त्याग कर साधु का जीवन जीने के लिए वो चले गए और उनका ये त्याग इस प्रकार से था कि जैसे कोई व्यक्ति विष्ठा को त्याग कर बिना पीछे देखे चला जाता है
When you pass stool, even though it comes from your body, it's intimately yours. In fact, physically, it's non-different than you.
विष्ठा को हम जब त्यागते हैं तब वो तो हमारे शरीर का ही एक अंग है वास्तव में देखा जाए तो वही हमारा स्वरूप है
I hate to be crude and use this example, but we're very attached to our children because we say they have come from my own body.
हमको ये उदाहरण देने में बड़ा संकोच हो रहा है लेकिन हमको देखना चाहिए हम अपने बालकों से अपने बच्चों से इसलिए प्रेम करते हैं हम कहते हैं कि ये मेरे अंग से निर्माण हुए हैं
But your stool also comes from your own body.
लेकिन आपकी विष्ठा भी आपके शरीर से ही आती है
But we're not attached.
लेकिन उनसे हम आसक्त नहीं है
The Vedas say that if your child is God conscious, that child can actually, by his devotion or her devotion, can save you from the repetition of birth and death.
शास्त्र में ऐसा कहना है कि आपका पुत्र, आपका बालक, अगर वो सचमुच भगवान का भक्त है, तो वो आपको जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त कर सकता है।
But if your child is sinful and materialistic, you would have been better off passing stool or urine.
लेकिन अगर आपका बालक वो पापी है और विषयी है, तो वो बिल्कुल मल मूत्र के समान ही है।
So he left everything in this way, and he began to perform tapasya.
इस प्रकार से भरत महाराज ने त्याग करके वो तपस्या में लग गए।
And he was completely absorbed in remembering God and chanting his names.
और पूर्ण रूप से भगवान का स्मरण कीर्तन करने में लीन थे।
But it is recommended that we practice our spiritual life in the association of other devotees.
लेकिन ऐसे हमको सलाह दी जाती है कि हम आध्यात्मिक जीवन की साधना जो है भगवान के बाकी भक्तों के संग में करें।
Because this material energy, Maya, is very powerful.
क्योंकि माया शक्ति बड़ी प्रबल है।
And at every step is trying to delude our intelligence and take us away from the spiritual path.
और पद पद पर वो हमारी बुद्धि को मोह में डालकर हमको इस आध्यात्मिक मार्ग से भ्रष्ट कर सकती है।
If we have the association of sincere devotees of the Lord around us, then even if we start becoming distracted by Maya, they will say, Prabhu, like this, you are in Maya, come back.
तो अगर हम सच्चे वैष्णव के संग में हैं, तो अगर हम थोड़ा सा माया के प्रभाव से यहाँ वहाँ जाते भी होंगे, तो वो हमको आके कहेंगे कि प्रभु इस प्रकार से कार्य करना चाहिए, आप माया में जा रहे हैं।
The idea of satsang is everyone is working together to help each other and protect each other on the spiritual path, and we require that satsang.
सत्संग का मतलब है कि सब लोग एक दृष्टि से एक उद्देश्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं एक दूसरे को सहयोग कर रहे हैं और इस प्रकार का सहयोग हमारे लिए बहुत जरूरी है
एंड हाउ मच वी रिक्वायर दैट सत्संग इज टोल्ड इन दिस स्टोरी
तो कितना हमको ये सत्संग जरूरी है आवश्यक है इस दृष्टांत में हम आगे सुनेंगे
भारत वाज लिविंग ऑल अलोन इन द फॉरेस्ट ऑन द बैंक्स ऑफ अ रिवर एंड ही वाज वर्शिपिंग द लॉर्ड एंड ही बिकेम सो प्योरिफाइड एंड सो एडवांस्ड that there were constantly tears coming from his eyes in love for God.
Bharat Maharaj ek aise nirjan sthal par apni sadhana kar rahe the jo ki ek shant jagah par nadi ke kinare tha और वो भगवान की इस प्रकार से भक्ति करने में इतने तन्मय होते जा रहे थे कि भगवत प्रेम की वजह से उनकी आंखों से हमेशा अश्रुपात हुआ करता था.
But that love had not yet become completely pure.
लेकिन वो प्रेम अभी तक पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुआ था.
As he was sitting in his meditation, a beautiful deer ran just by where he was sitting. It was being chased by a lion.
एक बार जब वो ध्यानस्थ बैठे थे, उन्होंने देखा कि एक सुंदर हिरनी वहां से आगे भाग गई और पीछे से एक शेर उसका पीछा कर रहा था.
This deer jumped across the river to escape from the lion.
और इस हिरनी ने उस शेर के चंगुल से बचने के लिए उस नदी के ऊपर से एक छलांग लगा दी.
As it was just over river, the lion began to roar.
और जैसे कि वो हिरनी उस नदी को लांग रही थी, तो वो शेर जो है बहुत जोर से दहाड़ा.
This roar was very fearful for the little deer. She was pregnant, and the baby within her womb, due to fear, came out and fell in the river.
ये जो शेर था, वो बहुत ही भयानक रूप से दहाड़ा, और जो हिरनी बहुत भयभीत हो गई, क्योंकि वो गर्भवती थी, अचानक वहीं पर उसकी प्रसूति हो गई, और उसका जो बालक है, वो उसके शरीर से बाहर निकल आ गया.
And even in the animal species, the mother loves her child, even if it's prematurely within her womb.
और हम देखते हैं कि पशु योनि में भी एक माता अपने बच्चे से बहुत ही प्रेम करती है.
But today, human civilization has become less than animals.
लेकिन आज मानव समाज तो पशु योनि से भी अधिक अधम हो गया है.
Today, if the child is in any way an inconvenience for the mother, she kills the child within the womb.
आज हम देखते हैं कि अगर पेट में जो बालक है, उससे माता को किसी भी प्रकार की असुविधा होने वाली है, तो माता अपने बालक की पेट में ही हत्या कर देती है.
In America, 1/3 of all children are killed within the wombs of their mothers.
अमेरिका में एक तिहाई बालक अपनी माता के गर्भ में ही माता द्वारा मारे जाते हैं.
And in other nations, over half the children die of abortion.
और बाकी के राष्ट्रों में तो आधे बालक गर्भपात की वजह से मर जाते हैं.
And here in India, which is supposed to be Bharat Bhumi, Dharma Bhumi, the land of religion, the land of compassion, the land of knowledge, in the name of family planning, the mother is becoming more cruel and heartless than the animals and killing their own children rather than taking the responsibility for their activities.
और यहाँ भारत में भी हम देखते हैं, ये तो पुण्य भूमि है, धर्म भूमि है, जिसमें धर्म, ज्ञान, न्याय और प्रेम, करुणा होनी चाहिए. वहां पर भी एक माता केवल कुटुंब नियोजन के नाम पर अपने बालक की हत्या करती है.
The karmic reaction for this type of murder is so terrible, we do not even want to discuss it this evening.
इस कर्म का जो कर्म फल है, वो इतना घृणास्पद और इतना जघन्य है कि यहां इस सत्संग में हम उसकी चर्चा भी करना नहीं चाहते.
But yet it is being promoted to be just the removal of excess tissue.
लेकिन ऐसे प्रचार किया जाता है कि गर्भपात मतलब सिर्फ कोई अधिक टिश्यू जो हमारे पेट में हुए हैं उसको निकाला जाया रहा है.
And when so many thing people all over the world are engaging in these cruel activities, massive karmic problems and destruction will take place.
और सारे विश्व में इतने पापमय कार्य में लोग रत हैं, कि इससे बहुत ही भयंकर कर्मफल का सामना करना पड़ेगा.
And this is why there are so many problems in this world. Killing innocent cows, killing innocent babies, and we're talking about peace and unity.
और हम देखते हैं कि यहाँ पर इतने निष्पाप गौओं की हत्या की जा रही है, निष्पाप अर्भकों की हत्या की जा रही है, और फिर भी यहाँ पर हम एकता और शांति की बातें करते हैं.
But this mother deer, when she saw her child helplessly drowning in the river, she began to weep and cry. It was such a terrible thing for her to see her own child dying that she herself lay down and died in complete anxiety.
तो जब उस हिरनी ने देखा कि उसका बालक जो कि नदी की पानी में डूब रहा था, वो बहुत रोई, उसको बहुत दुख हुआ, और ये जो उसको गंभीर सदमा पहुंचा, इससे वो बच नहीं पाई, और वहां पर उसने बहुत अत्यधिक चिंता के कारण अपने ही प्राण को त्याग दिए.
भारत was thinking, who will take care of this child? If I do not save this baby deer, it will drown. So he went into the water and picked it up.
और महाराज भरत ने सोचा कि मेरे अलावा इस बच्चे को कौन बचाएगा? इस तरह से उन्होंने अपने हाथ पानी में डालकर उस हिरन के बच्चे को बाहर निकाल दिया.
Then he began to think, the deer has no mother, the deer has no father. Who will protect it from lions? Who will feed it?
फिर उन्होंने सोचा कि इस हिरन के बच्चे को कोई माँ बाप नहीं है, फिर उसे खाना कौन देगा? उसके अगर कोई शेर आएगा, उससे उसको कौन बचाएगा?
So he accepted the deer as his own child.
तो उन्होंने उस बच्चे को, हिरन के बच्चे को अपने ही पुत्रवत संभालना शुरू कर दिया.
And he would bring it nice food and make it nice bed and treat it with great affection.
और वो उनको अच्छी तरह से खाते पीते सुलाते थे और बहुत ही स्नेह के साथ उनके साथ रहते थे.
And the deer became very attached to Bharat Maharaj.
और वो हिरन है, वो भी भरत महाराज के साथ बहुत आसक्त हो गया.
He would sit on him and lick him with tongue and look at him with nice eyes and play with him. And in this way, Bharat became so captivated by this deer that he gave up all of his sadhana, all of his bhajan, and all of his spiritual principles.
और ये बालक हिरण जब भी भरत महाराज के पास आते थे, बहुत ही प्रेममय दृष्टि से उनको देखते थे, अपनी जीवा से उनको चाटते थे, और दोनों में इस प्रकार से इतना प्रेम बढ़ गया कि धीरे धीरे भरत महाराज ने अपनी साधना छोड़ दी, अपनी भजन क्रिया छोड़ दी, और अंत में उन्होंने सारे आध्यात्मिक तत्वों को भी तिलांजलि दे दी.
Day and night, in great affection, he was simply worrying about the welfare of this deer.
और दिन रात महाराज भरत इस हिरन के कल्याण के बारे में सोचते रहते.
And death came.
और अचानक मृत्यु सामने आ गई.
And as he died, he was immersed in thought of his beloved deer.
और जैसे ही उनके मृत्यु का क्षण निकट आया, महाराज भरत इस हिरण के बारे में सोच रहे थे.
His dear deer.
जो हिरण उनको बहुत प्रिय था.
Then he looked at himself and he had the body of a deer.
जब उन्होंने अपने आप को देखा, तब पाया कि उनको एक स्वयं हिरण का शरीर मिला है.
But he realized, because of his previous spiritual activities, God had mercy upon him, and he could remember his previous life.
लेकिन क्योंकि उन्होंने इतनी भगवान की भक्ति की थी, भगवान की कृपा से उनको कुछ स्मृति प्रदान की गई, और वो अपनी जो भी भक्ति उन्होंने की थी उसका स्मरण कर सकते थे.
Even on the spiritual path, there are so many obstacles to divert us. That is why we require the satsang of sincere devotees to help us.
आध्यात्मिक मार्ग पर इतनी सारी अलग अलग प्रकार के अवरोध हैं कि हमको भगवान के भक्तों का संग अत्यावश्यक है.
But Krishna says in Gita, Neha bikramanasosti pratyavayo navidyate svalpam apyasya dharmasya trayate mahato bayat. That any advancement you make spiritually will be protected forever by God Himself.
लेकिन भगवान श्री कृष्ण गीता में वचन देते हैं कि इस अभिक्रम में आप जो भी कुछ प्रगति करते हैं, उसको मैं हमेशा अबाधित संरक्षित रखता हूँ.
Materially, anything you acquire in life, at death, it's gone. But spiritually, whatever advancement we make, even if we cannot complete the path, Krishna preserves that consciousness within us.
भौतिक दृष्टि से इस दुनिया में आप कौन सी भी चीज का संचय करोगे, मृत्यु के समय उस सब का नाश होता है. लेकिन आध्यात्मिक प्रगति में आप जो भी कुछ कमाओगे, भगवान की कृपा से उसका रक्षण होता है.
As a little deer, he went through the forest searching for sages who were discussing Harikatha and having Hari Kirtan.
तो एक हिरण के शरीर में अब महाराज भरत यहाँ वहाँ करते रहेंगे.
And with his beautiful ears, he simply drank the nectar of Krishna's words and Krishna's pastimes and Krishna's names throughout his life.
और इस तरह से अपने सुंदर से कानों से वो हरि कथा के अमृत का पान करने लगे.
When that soul left the body, it entered into the body of a very, very learned and compassionate Brahman.
और इस प्रकार से जब हिरण का शरीर त्यागने का भी समय आ गया, उसके पश्चात उनको एक ऐसे बहुत ही विद्वान और दयामय ब्राह्मण के शरीर में प्रवेश मिला.
In this birth, his name was Jad Bharat.
इस जन्म में उनका नाम था जड़ भरत.
He remembered his previous two lives and he decided to take the humblest possible position to just completely absorb himself in remembering God and not get entangled in any of the temptations of this world.
इस जन्म में उनको अपने पुराने दो जन्मों का भी स्मरण था, इसलिए उन्होंने ऐसे निश्चय कर लिया कि वो सबसे नीचे का सबसे नम्रतम स्तर लेंगे, जहाँ पर कोई उनको किसी प्रकार से तकलीफ नहीं देगा और वो केवल भगवान का स्मरण कर सके.
So he pretended to be a complete fool.
और इस तरह से उन्होंने एक मूर्ख आदमी का हुलिया बना लिया.
Anything his father tried to teach him, he would do it the opposite.
उनके पिता उनको जो भी कुछ करने के लिए कहते थे, वो बराबर उसका उल्टा काम करते थे.
His father loved him dearly.
उनके पिता उनसे बहुत प्रेम करते थे.
But his brothers thought he was just a complete disturbance to the family.
लेकिन उनके भाई जो थे, वो समझते थे कि ये केवल हमारे परिवार के लिए एक उपद्रव है.
His brothers put him in a field to just stand to keep the crows from eating the plants.
उनके भाइयों ने कहा कि आप इस खेती में रहना और अगर कोई कौवे अन्न को खाने आए तो उनसे इस खेती को बचाना.
This happened after the father died.
ये घटना उनके पिता के मृत्यु के पश्चात हुई.
At that time some dacoits captured him and wanted to give him as a human sacrifice to the goddess Kali.
और उस समय कुछ डाकुओं ने उनको पकड़ लिया और वो काली माता के सामने उनका नर बलि चढ़ाना चाहते थे.
Of course we know that the goddess Kali is a very divine being, an expansion of the energy of the Supreme Lord. But people who are in very much tamaguna, they worship in these terrible ways and she is not pleased.
हम जानते हैं कि काली माता तो भगवान की शक्ति है और कितने ही लोग हैं जो इस प्रकार के अत्यंत तमोगुणी रूप से उनकी पूजा करते हैं.
He didn't mind. He understood he was not his body and ultimately whatever Krishna wants, if Krishna wants to save me then nothing can disturb me and if Krishna wants to kill me then let me die.
और जड़ भरत ने सोचा कि मैं तो जानता हूँ, मैं तो ये शरीर नहीं हूँ और अगर भगवान श्री कृष्ण मेरा रक्षण करना चाहते हैं तो ठीक है और अगर वो मेरा प्राण लेना चाहते हैं तो वो भी उनकी सेवा के लिए ठीक है.
So very peacefully he laid his head on the chopping block.
और बहुत शांत रीति से उन्होंने अपने सर को उस वेदी पर रख दिया.
And the pujari came with his puja paraphernalia in the form of a big huge sword.
और पुजारी जो है वो उनकी इस विशिष्ट पूजा का सामान लेके आया. ये पूजा का सामान मतलब एक बड़ी तलवार थी.
And he chanted his mantras to the goddess and was about to cut off the head and offer the blood to the goddess.
और वो अपने मंत्र बोलकर उनका सर काटने ही वाला था और उस उनके खून को काली माता को अर्पण करने वाला था.
But the murti of Kali Devi, who is always there to protect the devotees, she personally came out of that form and picked up the sword out of the hand of the pujari and cut the pujari's head off.
लेकिन काली माता स्वयं उस मूर्ति को भग्न करके वहां से बाहर आ गई और उसने पुजारी के हाथ से तलवार को छीनकर उसी तलवार से उसी का सर काट दिया.
And she started screaming in anger.
और वो बहुत ही क्रोध से आक्रोश करने लगी.
And all the dacoits were very fearful to see their worshipable deity in this mood.
और सारे डाकू अपनी ये देवी को इस प्रकार से देखकर बहुत ही भयभीत होने लगे.
And out from the deity form came all these associates of goddess Kali, and they were all screaming in terrible anger.
और उस काली माता के शरीर से उनके सारे जो पार्षद हैं, सहचर हैं, वो आने लगे और वो भी बहुत जोर से आक्रोश करने लगे.
And she took their own sword and slashed off the heads of every one of the dacoits.
और उन्होंने उसी तलवार से उस सारे उपस्थित डाकू के समूहों को सबके सर को काट दिया.
काली माता की
जय.
And then they started taking the heads and throwing them to each other.
और सब लोग उस सर को लेकर, सब डाकुओं के सर को लेकर गेंद की तरह एक दूसरे के पास खेलने लगे.
And then Kali Devi offered her respects to Jad Bharat.
और काली माता ने जड़ भरत को प्रणाम किया.
And he went back into the forest.
और फिर वो वापस वन में चले गए.
And he was just walking around, completely engrossed in thoughts of Narayan.
और वो नारायण के विचार में स्मरण करते हुए वहां से जा रहे थे.
And one day, the king of the world, whose name was Rahugana, happened to be passing on a palanquin carried by four men.
और उस समय विश्व के सम्राट राजा रहुगण वहां से एक पालकी से जा रहे थे.
But one of the palanquin drivers became ill and he could not carry. So the king said, find someone else who is very nice and strong. So they went in the forest and they found Jad Bharat and they said, carry this palanquin. And he would do whatever he was asked, but he would do it his own way.
और ये पालकी उठाने वाले जो लोग थे उसमें से एक का स्वास्थ्य खराब हो गया. तो राजा रहुगण ने कहा कि ऐसे किसी व्यक्ति को लेके आओ जो जरा धट्टा कट्टा हो. तो इस प्रकार से उसके सैनिक, उसके सेवकों ने उस वन में छानबीन करके जड़ भरत को उठाकर लेके आए. लेकिन जड़ भरत बहुत ही अलग ढंग से उस पालकी को उठा रहे थे.
So he was holding one of the poles in the front and began to walk. But as they walked, some little ants were crawling on the road.
और जैसे ही वो एक खंबे को उठाकर जा रहा था पालकी का, सामने से कुछ चींटियां वो रास्ते से जा रही थी.
And knowing that there's a spirit soul part of God in the heart of every ant, he stopped very respectfully to let the ants pass comfortably.
और ये जानकर कि हर एक चींटी में एक आत्मा है जो कि भगवान का अंश है और उनका सम्मान करना चाहिए, जड़ भरत वहीं पर रुक गए कि इस चींटियों को जाने दो, उनके बाद हम आगे जाएंगे.
In fact, there are many ants on the ground here at Khar Gymkhana.
आप देखेंगे कि यहाँ पर बहुत सारी चींटियाँ हैं.
But we just walk.
लेकिन हम फिर भी चलते हैं.
If Jad Bharat was here tonight, it would take him a long time to come in and out.
अगर जड़ भरत यहाँ पर होते तो मैदान में आने या जाने के लिए उनको बहुत समय लगता.
Because wherever there is life, that is the symptom of the presence of the soul which is part of God.
क्योंकि जहाँ पर प्राण है वहां पर आत्मा का अस्तित्व है, ये हमको जान लेना चाहिए.
The atma is the infinitesimal part and parcel of the supreme paramatma.
आत्मा परमात्मा का एक अंश होता है.
ममायवम सो जीवलोके जीवभूत सनातन. कृष्ण इज लाइक अ गोल्ड माइंड एंड द जीवात्मास वी आर लाइक द गोल्ड इयररिंग्स और द गोल्ड रिंग्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ दैट गोल्ड माइंड. द नेचर ऑफ द पार्ट इज टू सर्व द होल.
परमात्मा एक सोने की खान की तरह है और आत्मा जो है वो सोने का एक गहना, एक कान के गहने या नूपुर की तरह है. तो आत्मा हमेशा उनका अंश होता है.
जीवेर स्वरूपोय कृष्णेर नित्य दास. दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन ऑफ द आत्मा टू सर्व द सुप्रीम आत्मा और कृष्ण.
जीव की स्थिति है कि वो हमेशा कृष्ण का नित्य दास है. इस प्रकार से हम हमेशा श्री कृष्ण की सेवा करनी चाहिए.
So when Jad Bharat stopped, out of respect for the soul in the heart of the ant, everybody else kept moving.
तो जब जड़ भरत तो रुक गए थे उन चींटियों का सम्मान करने के लिए लेकिन बाकी सब लोग तो जा रहे थे.
So when one person stops and three people keep walking, it is very uncomfortable to be riding on such a palanquin.
तो अगर एक आदमी रुक गया है और बाकी तीनों को जाने की इच्छा है तो जो पालकी पे बैठा है उसको बहुत ही असुविधा होती है.
So the king, what is this? Who has done this?
तो राजा को बहुत धक्का लगा. वो कहने लगा कि ये कौन है, कौन कर रहा है ये?
So the three palanquin holders pointed to Jad Bharat. It's this new man here.
तो तीनों बाकी के सेवकों ने कहा कि ये जो नया आदमी आया है ये सब गड़बड़ कर रहा है.
So Maharaj Rahugana warned him, do not do this again. I am the king, you are my servant, you do what I say, you do not stop until I tell you to stop. Otherwise you will be punished.
राजा ने उनसे कहा कि आप जानते नहीं कि मैं आपका राजा हूँ, आप मेरे सेवक हैं और ठीक तरह से काम करो. जब तक मैं आपको चलने के लिए कहूँ आपको चलना पड़ेगा.
So Jad Bharat began to walk once again.
और जड़ भरत फिर से चलने लगे.
But then an ant started crossing the road.
और फिर से एक चींटी जो है वो रास्ता पार कर रही थी.
So very respectfully he stopped to let it pass.
और फिर से जड़ भरत बहुत ही नम्रता से रुक गए.
And again the king became very much uncomfortable.
और फिर से राजा बहुत ही असुविधा में पड़ गए.
Why is this happening again? I have warned you.
बोले ये ऐसे बार-बार क्यों हो रहा है? मैंने आपको पहले से ही इशारा दिया है.
He began to scream at Jad Bharat, "You are a fool."
वो बहुत जोर से क्रोध करने लगे. कहने लगे कि आप मूर्ख हैं.
I am the king, you are the servant. Do you not know what you will get punished for doing this offense?
मैं राजा हूं और आप मेरे सेवक हैं. क्या आपको मालूम नहीं कि मैं आपको बहुत दंड दे सकता हूं?
After hearing the king go on and on, criticizing and blaspheming, Jad Bharat became very compassionate.
और इस प्रकार से जब जड भरत ने सुना कि ये राजा इतना जोर जोर से क्रोध करके बहुत दूषण दे रहा है, उनके मन में बहुत दया आ गई.
First time in his life, he spoke.
और जीवन में पहली बार उन्होंने अपना मुंह खोला.
He said, "My dear king, you are a fool."
उन्होंने राजा से कहा कि राजा आप मूर्ख हैं.
Because you think you're a king and you think I'm your servant.
क्योंकि आप समझते हैं कि आप राजा हैं और मैं आपका सेवक हूं.
But the soul within this body is our real self.
लेकिन हमारे अंदर जो आत्मा है वही हमारा सच्चा स्वरूप है.
And the soul is constantly transmigrating through various births.
और आत्मा वो तो अनेक अनेक देहांतर करके अनेक शरीर प्राप्त करते रहता है.
In the next birth, I may be the king and you may be my servant.
भविष्य के जन्म में शायद मैं राजा बन सकता हूं और आप मेरे सेवक होंगे.
All of these designations are an illusion.
ये सारी उपाधियां इसका मतलब केवल भ्रम है.
We are thinking, I am a man, I am a woman, I am an old person, I am a child, I am an Indian, I am American. These are all illusions.
हम समझते हैं कि मैं पुरुष हूं, मैं स्त्री हूं, मैं वृद्ध हूं, मैं बालक हूं, मैं भारतीय हूं, मैं अमेरिकन हूं. ये सब भ्रम है.
We know nothing about the person who is residing within these temporary vehicles called the material bodies.
तो इन भौतिक शरीरों में जो कि केवल क्षणभंगुर वाहन है, इसके अंदर निवास करने वाला जो सच्चा व्यक्ति आत्मा, उसके बारे में हमारे पास कोई ज्ञान नहीं है.
On the road, some people are driving in a Maruti, some are driving an Ambassador, some are driving in a Tata Mobile, some are driving in a Ford, some are driving in a Mercedes. But the driver is not those vehicles. According to our karma, we have a certain amount of money to afford a certain vehicle, but we are the person within.
हम रास्ते पर देखते हैं कि कोई व्यक्ति कोई मारुति कार चलाता है, कोई एम्बेसडर चलाता है, कोई फोर्ड, कोई मर्सिडीज चलाता है. लेकिन चलाने वाला व्यक्ति मतलब वो वाहन नहीं है. जिस प्रकार से जितनी हमारी क्षमता है, जितना हमारे पास पैसा है, जितनी लागत हम कर सकते हैं, वैसा हम वाहन खरीद सकते हैं.
Jad Bharat explained to Maharaj Rahugana, because your mind is uncontrolled by identification with all these superficial designations, you have forgotten your spiritual identity and your relationship with God.
जड़भरत ने रघुगण महाराज से कहा क्योंकि आप इस उपाधि से इतने आसक्त हैं, आपने अपनी स्वरूप स्थिति को और भगवान के साथ आपका क्या नाता है, इन सब की आपको विस्मृति हो गई है.
And this human life is meant to clean the mind of all of these upadis, these illusory designations, and understand our true self.
और मनुष्य जीवन इसीलिए दिया जाता है कि हम अपने मन को इन सारी उपाधियों से विनिर्मुक्त करें और भगवान के साथ हमारा संबंध है उसको स्थापित करें.
He spoke many chapters in Srimad Bhagavatam of transcendental knowledge.
जड़भरत ने जो कहा वो श्रीमद् भागवतम में अनेक अध्याय उनके वचनों से भर गए.
And when the king heard this, he came off of his palanquin and he placed the crown of his head along with his head at the lotus feet of Jadbharat and surrendered to him.
राजा रघुगण ने ये सब बातें सुनी, वो अपने पालकी से नीचे उतरे और अपने राज मुकुट को अपने मस्तक के साथ जड़भरत के चरण पर उन्होंने शरणागति ले ली.
This way he became the spiritual master of the king.
इस प्रकार से राजा रघुगण जड़भरत राजा रघुगण के गुरु बन गए.
And then he went back into the forest to keep his mind always attentive on Krishna.
और फिर जड़भरत फिर से वन में प्रवेश किए जिस प्रकार से वो सदैव श्री कृष्ण का स्मरण कर सके.
It is not required that we go to the forest. In this age of Kali Yuga, people cannot do what Jadbharat has done. But the Lord has descended in the form of Sri Chaitanya Mahaprabhu to give everyone a practical means by which we can always keep our consciousness fixed in Krishna and be blissful within our life and pass the final exam of remembering the Lord at the time of death.
लेकिन हमारे लिए ये मुनासिब नहीं है कि हम जड़भरत के समान वन में प्रवेश करें. हम वो कर भी नहीं सकते, लेकिन इस कलयुग में भगवान स्वयं एक ऐसी पद्धति लेकर अवतीर्ण हुए हैं कि जिस युग धर्म का पालन करने से हमको अत्यधिक आनंद की प्राप्ति होगी और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा.
We can cleanse our minds and our hearts of all unwanted attachments and desires and bring about the original pure state of spiritual consciousness that is dormant within us through the congregational chanting of Krishna's holy names.
हम भगवान श्री कृष्ण के पवित्र नामों का संकीर्तन करके हमारे मन और चित्त में जो भी सब अभद्र चीजें हैं, जो भी इस संसार से आसक्तियां हैं, उन सबको यहां से धो सकते हैं.
Krishna is none different than his name.
श्री कृष्ण अपने नाम से अभिन्न है.
All the power and the beauty of Krishna is within his name.
श्री कृष्ण की सारी शक्ति और उनका सारा सौंदर्य उनके नाम में सम्मिलित है.
We can remember Krishna at any time and any place by just taking his name.
हम यहां पर किसी भी समय और किसी भी स्थान पर केवल श्री कृष्ण का नाम लेकर उनका स्मरण कर सकते हैं.
ठाकुर भक्ति विनोद प्रेड गृहे ताको वाने ताको सदा हरि बोले ताको. Whether you are grihastha with wife or husband and children and occupation, or whether you are brahmachari or sannyasi living in the forest or ashram, this is not very important. But if you are living an honest and pure life and regularly chanting sincerely the names of the Lord, we will become free from all the miseries of this world and experience the eternal bliss of our soul and easily pass the last exam of remembering Krishna in this life and at the time of death.
Thakur Shri Bhakti Vinod ne kaha ke aap ek grihasthi hain, aapke baal bacche hain, ya aap koi brahmachari hain, sanyasi hain jo ki ban mein ya ashram mein rehte hain, आप कौन से स्थान पर हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है. महत्व इस बात का है कि आप सदैव हरिनाम लेते हैं और हरिनाम लेने से आपका जीवन सुखी हो जाएगा और इसी के बल पर ये जो अंतिम परीक्षा, ये जो फाइनल एग्जाम है, इसमें आप उत्तीर्ण हो सकते हैं.
चेतो दार्पण मार्जनम भव महादवाग्नि निर्वापनम the greatest benediction in all the world in this age of Kali Yuga is the congregational chanting of the holy name of the Lord. For through this process, we can perfect our human lives and experience the ultimate ecstasy of love of God that we are all longing for.
इस कलयुग में सर्वोत्तम आशीर्वाद लोगों के लिए जो दिया गया है वो है भगवान के नाम का संकीर्तन, जिससे कि हम हमारे जीवन को, जीवन की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं.
In fact, the only safe place in this whole world is where devotees have gathered together to feelingly and sincerely chant God's name.
वास्तविक तो ये कहा जा सकता है कि इस सारे विश्व में एकमात्र सुरक्षित स्थान वही है जहां पर अत्यंत भाव से, अत्यंत प्रेम से भक्त लोग एकत्र आकर भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं.
Because in life or death we have Krishna if we remember his name.
क्योंकि जीवन में या मरण में हमारे पास सदैव कृष्ण रहेंगे अगर हम उनका स्मरण करेंगे तो.
His divine grace Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada took this most merciful and simple process of Hari Kirtan and spread it to every part of the world. And thousands, hundreds and thousands, millions of people are perfecting their lives, coming from all different types of backgrounds and finding true peace and love in Krishna's name.
Srila Prabhupada ne ye jo atyant sulabh vidhi hai, atyant dayamayi vidhi hai, iska sare vishwa mein prachar kiya aur aaj hazaro, lakho, balki karodo log इस बहुत ही सुंदर विधि का फायदा उठाकर अपने जीवन को सुखी और इस जीवन का अंतिम उद्देश्य प्राप्त कर रहे हैं.
श्री हरि नाम संकीर्तन की
जय.
श्रील प्रभुपाद की
जय.
At this time we would like to invite all of you to make your lives most auspicious and bring about the greatest benefit to all the world through participating in this most merciful and wonderful gift of the Lord of Harinam Sankirtan.